आज हम युग की कहानियों में एक और मजेदार कहानी सुनेंगे। अब पापा आप सुनाओ।
आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ नर और नारायण की, और ये आगे जाके इसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी, जो कि शायद से आपको ऑलरेडी पता होगी, इसलिए मैं पहले आपको हिंट नहीं देता हूँ और कहानी शुरू करता हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, दो ऋषि थे और वो जुड़वा भाई थे, नर और नारायण, और उन्होंने बहुत साल तक तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने बहुत लंबी आयु, बहुत शक्ति और बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली। उसी टाइम पे एक राक्षस था, बहुत भयंकर राक्षस, उसने भी बड़ी घोर तपस्या की। उसका नाम था दंबोद्भव। दंबोद्भव ने सूर्य भगवान की प्रार्थना करी, क्योंकि आदि जो सृष्टि के हैं सबसे तेजस्वी हैं, सबसे जो जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ वो सूर्य नारायण को ही मानते हैं हम, है योगी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा तेज है। सूर्य के बिना तो हम कभी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। अगर सन नहीं होगा तो सनलाइट नहीं होगी, हर तरफ अंधेरा होगा, ना कभी बारिश, ना कभी आपका वेदर, ना लाइट, ना लाइफ रहेगी, है ना। तो सब यही कहते हैं कि प्रकाश से ही पहले जीवन उत्पन्न हुआ था, अलग अलग तत्व बने थे। तो दंबोद्भव ने भगवान सूर्य की प्रार्थना करके, जब तपस्या करके, और उनसे वरदान ले लिया भले अमर होने का। लेकिन सूर्य भगवान बोले, भी अमर तो नहीं हो सकता, जो भी पैदा हुआ उसे मरना तो पड़ेगा, हर एक चीज़ की रिसाइकलिंग तो होती है ना, तो अमर तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर आप ना जैसे आपने अपने तेज से भगवान विष्णु का चक्र बना के दिया था, भगवान शंकर के लिए आपने भाला बनाया था, देन त्रिशूल, वैसे ही आप मुझे ना 1000 कवच दे दो, और कोई भी कवच है वो 1000 साल से पहले ना टूटे, कोई भी मेरे साथ युद्ध करे तो, और मुझे ना कोई देवता, ना यक्ष, गंधर्व कोई ना मार सके। भगवान सूर्य ने कहा ठीक है, तुम्हें 1000 कवच दे देता हूँ। अब उसने तो अपनी तरफ से सोच लिया था कि देवता, यक्ष, गंधर्व कोई नहीं मार पाएगा, और 1000 साल कोई आदमी जिंदा रह नहीं सकता। और उसने फिर अत्याचार करने शुरू कर दिए लोगों पे, क्योंकि कोई मार तो सकता नहीं था, कवच था उसके पास, बड़ा शक्तिशाली, उसमें से कोई बार पार होता नहीं था, और उसमें को बड़ी शक्ति मिलती रहती थी, बड़ा तेज था उसमें। तो वहीं पे जब नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर ने उन्हें कहा भी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, अब तुम क्या चाहते हो। तो वो बोले, प्रभु हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आपके दर्शनों के ठीक है, आप हमें जो धरती पे आए हैं हमें अपना मकसद बता दें, हमारे लिए कोई काम है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उसे पूरा कर दें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए काम तो ज़रूर है, और उसके लिए तो तुम्हें और शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, तुम अपने आप को थोड़ी आयु सिद्धि कर लो, और ये संजीवनी मंत्र जो है, जैसे भगवान शुक्राचार्य को था, प्राप्त था, मैं तुम्हें ये विद्या सिखा देता हूँ कि तुम मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हो। बोले अच्छा, और ये तुम्हारे बड़े काम आएगी। अरे ठीक बात है, उन्होंने सीख ली, उसके बाद शक्ति भी अर्जित कर ली, और वो जुड़वा भाई थे तो एक जैसे दिखते थे। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान ने कहा था कि इसके बाद, ये सारी सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने के बाद, तुम्हें दंबोद्भव को मारना पड़ेगा। बोले अच्छा जी, अब क्या करते हैं। 1000 साल तपस्या करी और फिर वो लड़ने चले गए, सॉरी, उनमें से जब नर चला गया पहले लड़ने, अब दंबोद्भव से लड़े, उन्होंने उसने सोचा कि ये आदमी क्या बिगाड़ेगा मेरा, लेकिन जब लड़े तो उसे पता लगा, अरे भाई ये तो कोई पहुंची हुई चीज़ है। 1000 साल तक उनका युद्ध चलता रहा। 1000 साल तक युद्ध करते करते उसको उसके ऊपर कवच तोड़ दिया नर ने। जैसे कवच टूटा तब तक नर भी वीक हो चुका था। उससे जो छिटकारे निकली और कवच टूटा तो नर मारा गया। अब दंभोद्भव के पास तो 999 कवच बचे थे, 999। और उसने सोचा चलो दुखी तो करा इसने, लेकिन ये मारा गया, खत्म बात। तभी देखा सामने से फिर से नारायण आ गया और वो एक जैसे दिखते थे। उसने सोचा रे ये तो अभी तो मैंने इसे मारा था, ये कैसे जिंदा हो गया। तो उसने कहा नर तो मरा पड़ा है, लेकिन मैं नर का भाई नारायण हूँ और उस मैंने शंकर भगवान से अपने लिए संजीवनी विद्या से संजीवनी ने सह जीवन जो जीवन को दोबारा प्रदान कर दें। नर को जिंदा कर दिया। नर चला गया तपस्या करने। फिर नारायण ने 1000 साल तक युद्ध किया, उसका दूसरा कवच तोड़ दिया। कितने बचे उसके? 2 कवच खत्म हो गए 1000 में से, तो 998 कवच बचे। तो ऐसे उन दोनों ने अलग हो के कर करके और उसको उसके सारे कवच तोड़ दिए। जब आखिरी कवच बचा था टूटने के बाद, वो भाग के सूर्यदेव की शरण में पहुंच गया। उन्होंने कहा सूर्यदेव आपके दिए सारे कवच तोड़ दिए हैं और मैं मुझे मेरी रक्षा करो। सूर्यदेव ने कहा भी भाई देख मैं तो तुझे पहले ही बताया था कि कोई अमर तो हो नहीं सकता है, काल तो तिराना ही था। वो बोला नहीं 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 मैं आपकी शरण में, आप शरण में आए हुए को ऐसे धोखा नहीं दे सकते, जीवन दान आपको देना ही पड़ेगा। तो सूर्य भगवान बोले देखो अभी ऐसे तो नहीं, अब मेरी शरण में आ गए हो तो चलो कोई नहीं कुछ मैं देखता हूँ। उधर से उसका पीछा करते करते नर और नारायण भी आ गए। नर और नारायण ने जाके देखा कि सूर्यदेव आप इसे हमारे वाले करो, अब इसे मरना ही पड़ेगा, इसने बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत लोगों को सताया है। तो सूर्य भगवान बोले कि भाई मेरी शरण में आए, शरण में आए हुए को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर वो श्राप दे गया उनका कि देखो आप तो जाओगी, इससे तो मरना ही है, लेकिन इसके पाप में आप भी पाप के भागीदार बन गए हो, इसलिए आपको भी इसके जो पाप का अंश है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप सही होते हुए भी गलत जगह खड़े हो गए और अपने उसी कवच होते हुए भी कवच आपकी रक्षा नहीं कर पाया और आपको हमारे हाथों ही मरना पड़ेगा। और ये बात कब सिद्ध हुई? महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में नर और नारायण कौन थे? नारायण थे भगवान कृष्ण, नर अर्जुन, और सूर्य पुत्र कौन थे? कौन थे सूर्य पुत्र?
मैं बोल क्या?
कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण थे। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था तो किसने मारा था? अर्जुन ने, जब रथ का पहिया फंस गया था कर्ण का, तो अर्जुन ने मारा था ना। तो महाभारत के शायद 40वें पर्व में, महाभारत के पर्व में फिर बताते हैं कि भगवान कृष्ण भी बताते हैं, और जब अर्जुन पाशुपत अस्त्र लेने गया था भगवान शंकर से तो उन्होंने भी बताया था कि पिछले जन्म में तुम नर और नारायण हो चुके हो और इस जन्म में भी जो दंभोद्भव का भार था और सूर्यदेव का भार था उनका एक ही अंश पैदा हुआ है कर्ण के रूप में, और वो भार तुम्हें अब उतारना होगा, उसे पूरा करना होगा। अब ये तो थी कहानी जिसमें कि नर और नारायण ने मार दिया दंभोद्भव को अंत में कर्ण के रूप में। ये कर्ण का कवच कुंडल भी उतार लिए थे इंद्रदेव ने, है ना, मांग लिए थे, याद है आपको?
हाँ जी।
जब वो नहा के निकल रहा था तो कर्ण बड़ा दानवीर था और उसे जो भी कुछ मांग लेता था वो मना नहीं करता था। तो एक दिन इंद्रदेव आए ब्राह्मण के रूप में और उससे अभय दान मांग लिया और कहा कि जो मैं मांगूंगा आप दोगे, तो वचन दे दिया था कर्ण ने। तो कहा कि मुझे अपने कवच और कुंडल दे दो, क्योंकि पता था जब तक उसके पास कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, कोई तीर उसे भेद नहीं सकता, भाला गदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था उसका। और जब तक उसके पास रहता उसके पास शक्ति भी रहती और बचाव भी रहता, और अर्जुन के लिए वो हमेशा खतरा बना रहता। इंद्रदेव अर्जुन का बेटा था तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उनके कवच कुंडल ले लिए थे। अब इसमें छुपी छोटी छोटी बातों को मैं बताता हूँ आपको कि इनका असल में मकसद मेटाफर के मीनिंग्स क्या हैं। नर बोलते हैं इंसान को, नारायण बोलते हैं भगवान को, जैसे भगवान कृष्ण थे, है ना। तो जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है इट ऑलवेज कम्स इन टू फॉर्म्स एंड द थर्ड इज द गॉड एलिमेंट, है ना, गुरु शिष्य माँ बाप और आत्मा परमात्मा। तो यानी नर इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन इन फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बॉडी एंड नारायण इज योर सोल। दम्बोद्भव राक्षस कौन था? दम्ब होता है अहंकार, उद्भव यानी पैदा होना, घमंड प्राइड, है ना। जैसे अब किसी में शक्ति आ जाए तो क्या होगा, उसमें वो प्राइड आ जाएगा ना उसमें बहुत ज़्यादा, तो दम्बोद्भव उसे रिप्रेजेंट करता है जो दम्ब से जिसकी उत्पत्ति होती है जब हम अपनी शक्ति को अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगते हैं और फिर उसका विनाश करने के लिए इंसान कर्म करता है और भगवान प्रेरणा देता है। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी कौन बने थे, कौन चला रहे थे कृष्ण उसका रथ, कृष्ण भगवान, है ना। और फिर उन्होंने जो भी धर्म के खिलाफ खड़े थे, चाहे वो दुर्योधन था, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण थे तो और कर्ण था, ये सब बड़े महारथी होते हुए भी इनके खिलाफ युद्ध किया और धर्म की विजय हुई और उन्हें हराया। ये थी आज की कहानी नर और नारायण की। एक कविता में भी बोलते हैं कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। यानी कि जब हम सरेंडर कर देते हैं भगवान को, अपने आप को, हम अपने आप को भी से हटा देते हैं और सिर्फ जैसे कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया निष्काम कर्म करना, हम कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा किए हुए। वी डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं जीत जाऊँ, नहीं, लेकिन मुझे काम अपना अच्छे से करना है बिना फल की चिंता किए हुए, ठीक। और इसके डिटेल में जो है वो मैं आपको धीरे धीरे बाद में समझाऊंगा कि निष्काम कर्म कैसे करते हैं, उसका क्या अर्थ है। तो ये थी आज की कहानी और अगली कहानी में आपसे फिर मिलते हैं। गुड नाइट।
गुड नाइट।